अर्थ में बना होता है आत्मा का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बात बच्चों को समझाते हुए ये नाटक है कुछ और दूसरा इस समय सब नाटक नाटक किसको कहा जाता है जो रचयिता बात और उसकी रचना को न जाने रचयिता बात कौन है और उसकी कक्षा रचना कौन है कौन है रचयिता बात कौन है कहेंगे बिंदी पांच सौ मनुष्य आत्मा ही थी कीड़े मकोड़े तक पत्तियों की आत्मा भी दूर है तो पता नहीं चलेगा कौन सी आत्मा रचयिता बात है। और फिर बिंदी को रचयिता तो नहीं है जो बिंदु है वो अगर हमारा अविनाशी है या रसी बने रहेंगे और समाप्त होने रहेंगे तो अगर हमारे अविनाशी तो आत्माओं के बाप को बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को कोई रचयिता नहीं कहेंगे क्योंकि आत्माएं अविनाशी है उनका विनाशी नहीं होता तो रचना का सवाल कहां पैदा होता है। तो शिक्षा रचयिता है नई शक्ति का रचयिता ब्रह्मों की नई दुनिया का रचयिता है उसका कारण होगा या निराकार होगा दोनों ब्राह्मण साकार में तो ब्राह्मण का रचयिता भी साकार होगा शक्ति साकार है तो साकार शक्ति का बात भी साकार होगा जो कि हिंदू बात एक मनुष्य शक्ति का जो बीज है जिसे आदम कहते हैं मुसलमान लोग अंग्रेज लोग ऐसा ही कहते हैं हिंदू लोग उसको आदिदेव कहते हैं और जैन लोग उसको आदिनाथ कहते हैं। है एक ही शक्ति का आदि पिता मनुष्यों का पिता उसमें वो कुछ जो कि हिंदू सुबह प्रवेश करता है और प्रवेश होकर के प्रकट होता है जब तक वो प्रवेश न हो तब तक आदि पिता भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता और आदि पिता के बगैर कि वो ज्योति बिंदु की पहचान भी किसी को नहीं हो सकती। ये अनादि अविनाशी प्रवृत्ति है किसी किसी मनुष्यों के पिता की और परमात्मा की रुचि एक है भोक्ता और एक है अभोक्ता सब नास्तिक हैं। उस रचयिता बाप को कोई नहीं जानता जो रचयिता निराकार बाप उस शक्ति पर साकार में रहकर के निराकार से उसका पाठ बन जाता है। निराकार का मतलब ये नहीं बिंदु निराकार का मतलब निराकारी स्टेज में रहने वाला निराकारी स्टेज की यादगार है कि बिंदु जिसको हाथ पांव ना कान कान नहीं दिखाए उनकी किताब इतनी नहीं दिखाए जो ऐसी स्टेज उसने बुद्धि के धारण की कर्मेंद्रियों का भान उसको नहीं रहा अगर कर्मेंद्रियों शरीर में से हटा दी जाए ना का कान हाथ पांव आदि अलग कर दी जाए तो क्या बचेगा बिल्ली ही बचेगा ना बिल्ला का रूप ही तो बचेगा इसलिए जगन्नाथ के मंदिर में श्रीनाथ के मंदिर में गोल काली नकल दिखाते उसमें आठ नाक कान बनाए देते वास्तव में जो निराकार स्वरूप इस बात की यादगार है कि परमात्मा निराकारी स्वरूप को धारण करने लगे इसीलिए शिवलिंग में बिंदु भी दिखाती है सोमनाथ के मंदिर में बिंदु की यादगार क्या थी हीरा तो हीरा है फिर ज्योति बिंदु की यादगार और लिंग है साकार स्वरूप की यादगार जो पुरुषार्थ करके ऐसा स्वरूप धारण करता है ऐसी स्थित धारण करता है जो निराकार इसके संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। सब नास्तिक है इस तरह का बात तो कोई नहीं जानते और उसकी रचना को भी नहीं जानते आप एक तो बात को नहीं जानते दूसरा कैसे ईश्वर करो जाती है जाती है या रुक जाती है संसार में वो एक जाति होकर के प्रत्यक्ष होता है, ये सर्वजाति होकर के प्रत्यक्ष होता है वर्षा देता है। एक जाति होकर के संसार में आकर के वर्षा देता है सुख शांति का सुरक्षा। बुलाते भी हो परम पिता परमात्मा जो दुखी है, ये गीत भी इस समय पर गाया हुआ है। कौन सा सूर्य के लिए आकाश का राशन उस समय पर गाया हुआ है जब के साथ नीचे स्टेज में गिरे हुए सब सभी की स्टेज में अपने को अंदर के अनुभव करते हैं। बड़े से बड़े पवित्र रहने वाले सन्यासी भी क्यों हैं, लेकिन वो भी अंदर से फील करते हैं कि हम वास्तव में पावन देवता नहीं है, हम भी अपवित्र। बच्चों की क्या भूल हुई है जो बात से भूले हुए हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राज्य सिखलाया, अनाथ से सनाम बनाया, उन्हों को नहीं जाना। जाते भी नानक को सनाथ बनाने वाले, अनाथ को सनाथ भारत को ही बनाते, भारत ही सनाथ बनता है और भारत ही अनाथ बनता है। भारत सदा सुखी था, क्वालिटी थी, राष्ट्रीति थी, देश का आश्रम था। भारत महान कवित था, बहुत क्वालिटी थी। गाते भी सेवा कला संपन्न सबसे अंदर विचारी अहिंसा परम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम क्या अनाथ बन गए। उनको पता ही नहीं है अहिंसा अहिंसा किसको कहा गया। वो समझते हैं गौ आदि के मारना कोई हिंसा है, जानवर गौ को मारना कोई हिंसा है क्या है? कौन सी गौ को मारना हिंसा है? गौ शास्त्र में किसको कहा गया? जानवर गौ में किसी कहा गया नहीं। गौ कहा जाता है सीधे साधे पानी। कौन सा सीधा साधा पानी? जिसके शरीर में सब देवताओं का निवास बताया जाता है। कहते हैं गौ की पूंछ पकड़ करके देवता स्वर्ग में चढ़ गए। तो पूंछ कौन सी है? दो अभिमानी की पूंछ है। उस दो अभिमानी की पूंछ में जितने भी पुरुष होते हैं वो सब दुर्योधन के शास्त्र का पाठ बजाने वाले होते हैं। वो उसको गौ का आधार लेते उसी स्टेज में जाने के लिए, नहीं तो वो उसी स्टेज में जा नहीं सकते। शक्तियों का आधार लिए बगैर वो साथ में सीखा कर नहीं जा सकता। इतने सीखे नहीं बन सकते जो दो हनुमान को जलाए गए पांडव पक्ष बन गए। वो तब ही जला सकते हैं जबकि ध्रुव पद पाने लगी दो कभी उनके साथ दे। तो कहा है कि शक्तियों के द्वारा परमात्मा शिव इस संसार में प्रकट होकर शक्तियों के द्वारा ही सारा कार्य संपन्न करता है। क्यों पांडवों के द्वारा क्यों नहीं? शक्तियों के तरफ का देश क्यों बुलवाया? शक्तियों तरफ का द्वार खोलने के लिए तो क्यों नहीं? कहते हैं जो ब्रह्मा द्वारा स्वयं के युद्ध बुलवाता है तो पुरुष रूपधारी ब्रह्मा के द्वारा या जो प्रैक्टिकल शुरू करे चलता है उसके द्वारा ब्रह्म माना बड़ी और माँ माने माँ, ब्रह्मा माने बड़ी। गाड़ी में चला ले ब्रह्मा का स्वरूप तो गाड़ी पूजन नहीं होता, गाड़ी में पूजन नहीं होता, लेकिन जगदम्बा का पूजन होता है। मुंडी में बोला है ये ब्रह्मा ही जगदम्बा, तो गाड़ी में चला ले जगदम्बा है क्या? गाड़ी में चला ले जगदम्बा होता है तो उसकी पूजा होती, मंदिर बनती, मूर्तियां बनती, लेकिन नहीं। वही गाड़ी में चला ब्रह्मा सभी छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता और साक्षात जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होकर वो जगदम्बा भी आदि शक्ति है, आदि रचना है परमात्मा बाप की। उस जगदम्बा को परमात्मा बाप के विश्व की बाधिकारी का दर्शन और जगदम्बा से सब बच्चों को मिलता है। तो जगदम्बा ही निमित्त बनती है, शक्तियां ही निमित्त बनती है, तो ऐसा देश नहीं होती है। कोई पुरुष निमित्त नहीं बनता। तो समझते हैं कि बहू आदि के मारना नहीं सर, तो कौन सी गलत की बात है? काम घर में बहू कहा गया है तो कोई जानने की उनकी बात है क्या? नहीं, भारत की कन्याएं माता है उनको भी बहु कहा जाता है, विदेशों की कन्या माता को बहु नहीं कहता कहा जाता है। कहीं क्यों क्यों नहीं कहेंगे कि बहु की एक विशेषता होती है बहु के स्वभाव की, कि जिस चीजें को उनको बांध दिया जाए जीवन भर उसकी चीजे से बंध गए। तो भारत की कन्या माता की विशेषता है कि अपने जीवन में जिस चीजों को उनको बांधा गया सारा जीवन वहां जिताती, और विदेशी कन्या माता ऐसा पार्थ नहीं बजाती, बांधो तलाक देने की कथा, डायवर्स देने की कथा, एक और दूसरा दूसरा को ठीक है, तो उनको बहु नहीं कहेंगे। विदेशी नदी में कोई स्नान नहीं करता है, विदेशी नदी में तो पति पतावनी नहीं समझा जाता, उनकी नदियों को पति पतावनी कहते हैं, भारत की नदियों को पति पतावनी कहते हैं। तो कोई जल नदी की बात नहीं है, जानवर बहु की बात नहीं है, उस बहु के मारने की हिंसा की बात नहीं है, कौन से बहु की मारने की हिंसा की बात है? कैसल में गौ है, गौ काल कन्हैया की गौएं कही जाती है, उन गौओं को जो हिंसा करता है, कौन सी हिंसा? काम कटारी की, मैन बाहों से मारता है या वाइब्रेशन से मारता है, गंदे वाइब्रेशन फैलाकर अथवा करबंदियों से कर्मणा से कोई भी कर्म करता है, तो उसको क्या कहेंगे? गौ घात करने वाला, गौ की हिंसा करने वाला। आप कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना, ये बड़ी भारी हिंसा है। रावण की प्रवेशता के कारण सब पति को बन सकते, क्योंकि भारत में तो कितना भाव होता है, भावना होती है, श्रद्धा होती है, ऐसे श्रद्धा विश्वास वाले भावना वाले देश में परमात्मा आते हैं, लेकिन रावण क्या हाल बनाए देता है? भगवान के आने के बावजूद भी रावण ऐसा विकराल रूप को माया भी रूप धारण करता है, तो क्या बुझा देता है? तो भगवान को फिर से बुलाते कि आकर के फिर से पतितों को पावन बनाए। बात कहते हैं नंबर वन दुश्मन है ये देह अभिमान, रावण जिसको पांच विकारों का पुतला कहा जाता है वो नंबर वन दुश्मन है, या उसके भी कोई नंबर वन दुश्मन है? पांच विकारों का बाप कौन है? रावण का जब चित्र बनाते हैं तो उन पर गधे का चित्र बनाते हैं और नीचे दस से दिखाई जाते हैं, पांच पुरुषों को पांच स्त्री में, तो ये गधे का सिर है, ये क्या है? दे अभिमान, जैसे गधे में दे अभिमान होता है उसको कितना भी नहलाओ धुलाओ लेकिन जहाँ धूल दे देगा उनका सख्त दे दिया, तो दे अभिमान की धूल में लौट जाने वाला है, दे अभिमान है पांच विकारों का बाप। अगर ये देह अभिमान ना है तो पांच विकार पैदा ही नहीं हो सकते। जिन्होंने अनाथ बनाया है ये पांच विकार हैं और इनका मूल है देह अभिमान, तो काम को जो लोग मोह इनका, ये पांच विकार तुम्हारे बेटे हैं, बाप सुन चुके हैं ये भारतवासी बच्चों, सचिन में तो तुम तना चुकी इतने चुकी थी, कौन शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, नरक से चला गया ना, स्वर्ग गया माना नरक की दुनिया से चला गया, तो समझना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। जब कहते हैं स्वर्ग पधारा तो कहाँ से स्वर्ग पधारा? नरक से स्वर्ग पधारा, लेकिन भक्ति मार्ग में कुछ कहावत कहावत होती है, न समझते हैं कि ये दुनिया नरक है और न समय और न ये समझते हैं कि स्वर्ग कहाँ, वो तो ऐसे ही कह देते हैं, बात तो मैं जानते तो है कि की आत्मा कहीं छोड़कर के देश जन्म देती है, उनको छोड़कर जाती जन्म देती है। नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक और स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में का विजय। मरने का मतलब क्या हुआ? मरने का मतलब यह हुआ संगम की दुनिया में जो जीते भी मरते हैं वो ही शरीर रहते अनुभव कर सकते हैं तो हम कैसी दुनिया में बैठे संगम की सड़क का अनुभव करेंगे, बाप के बच्चे का अनुभव करेंगे। अगर देह अभिमान से मरते नहीं है इस देह और देह के संबंधों की दुनिया से अपने को मारा नहीं है इसमें जीते हैं तो कभी भी कितना भी ज्ञान दे दे लेकिन वो उनका ज्ञान रावण का ज्ञान हो जाएगा। अपने तो सुख शांति में अनुभव अनुभव नहीं कर सकते, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए दुनिया की नजरों में चाहे भले ही कितने बड़े महारथी माने जाए लेकिन अंदर से उनको सुख शांति नहीं। भारत में कहावत है स्वर्ग का भारत, मर गया तो स्वर्ग का भारत, कहते हैं बिना मरे शरीर नहीं जिंदा, तो कौन सी मरने की बात है? शरीर से मरने की बात है क्या? शरीर से मरने वाला कोई स्वर्ग का भार नहीं सकता, कोई जान नहीं, शरीर से मरने की बात नहीं, क्योंकि अभी स्वर्ग है ही नहीं, ये दुनिया ही नरक है, दुखदायी दुनिया है। तो दुखदायी वातावरण का जो शरीर छोड़ेगा अंत मत दुर्गति होगी, तो क्या करना चाहिए? अपना वायुमंडल ऐसा पशु प्रधान ज्ञानी से बनाना चाहिए, अपना वायुमंडल ऐसा देश बनाना चाहिए जिसमें दुखों का नाम लेकर हम प्रवेश कर, कोई भले हमको दुख दे ले लेकिन हम दुख ग्रहण न कर, न दुख दो और न दुख दो, ऐसी चीज अपनी बनाई। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने को आत्मा देह अभिमान से परे हो जाए। दुनिया को अभी गौरव नरक, गौरव नरक कहा जाता है, गौरव पुराण में कथाएं भी हुई रौरव नरक की, और कोई ऐसी नदी जिसे रहता है नहीं, नहीं है जिसे सागर में सब वो के खाती रहती है। ये दुनिया ही संसार सागर है, विषय सागर, एक जो को काटते हैं दुखी कहते हैं, बात आकर के समझाती है दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है, बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक और अभी अभी स्वर्ग, जिनके पास बहुत धन है वो स्वर्ग में है, नहीं, धनवान भी दुखी होते हैं, इतने सारे दुनिया दुखी है, धनवान दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। बात कर जाते हैं तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक के लिए, बच्चों को तो पता ही नहीं है कि कौन से माता पिता है जिनकी कृपा से तुमको दलेर मिलती, कौन से माता पिता है, क्या ब्रह्मा संस्कृति की कौन है? अगर ब्रह्मा संस्कृति को कहें तो कुछ बनेरे भी होने चाहिए, लेकिन कुछ बनेरे तो किसी को अभी महसूस नहीं हुए, क्योंकि बनेरे का मतलब ये नहीं है ईटों पर सुख धाम और शांति धाम बनाई दिया तो तुमको शांति की दुनिया मिल गई, नहीं, ये तो अंदर की बात है, अंदर से ऐसा उमंग उत्साह पैदा हो, ऐसी तेज प्राप्त हो जाए कि जिसमें आत्मा दुख का अनुभव नहीं होता, दुख की दुनिया में रहते हुए भी आगे आने वाली दुनिया तो बहुत दुख की दुनिया होगी जब कयामत बढ़ता होगी, चारों तरफ काल ही काल मंडराएगा, लेकिन उस तरह जो बात के बच्चे होंगे जीते की मरने की इच्छे बनाने बच्चे होंगे वो सुखी होंगे या सुखी होंगे, वो उस समय सुखी होंगे और बाकी सब हाहाकार करके मौत से अपने शरीर को रहे। तो दो प्रकार की दुनिया हो गई, एक स्वर्ग की दुनिया जिसे दूसरे घर वाले पैरा भाई या जन्नत कहते हैं, वो दुनिया का नजारा अभी सामने आएगा, और एक वो दुनिया जिसको जोजस कहते हैं, कहते हैं भार, जैसे भार में किसी कीड़े मकोड़े को डाल दे तो कैसे मरेगा, कुछ नहीं कर सकता, तरफ तरफ के मर जाता है,
के हुकुम माता पिता हम बालक के तो मरीज के साथ कुछ जमेरे लेकिन मरीज को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण की जाकर के आगे जाकर के कहेंगे तो माता पिता हम बालक के तेरे राधा कृष्ण के आगे की जाकर के कहेंगे तो माता पिता हम बालक के तो क्या दो रूप हो जाएंगे माता पिता जी शक्ति का माता पिता सारी शक्ति का माता पिता एक युग होगा या दो युग होंगे एक युग या तो राधा कृष्ण कहो या लक्ष्मी नारायण कहो तो बात क्या है बात अब समझ में आती है कि वही राधा कृष्ण वाली आत्मा है जो सती है राधा कृष्ण रूप की बच्चे की रूप में प्रत्यक्ष होती है जन्म लेकर वही आत्मा है अभी चोरी छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है और जिन ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करती है उनकी द्वारा प्रत्यक्ष होती है। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता हमारे कहता है और उनकी रचना को कोई जानती है शक्ति का चक्र है माया का चक्र नहीं कहेंगे माया को पांच विकारों को कहा जाता है संपत्ति दान भव आयुष्मान भव पुत्रवान भव ये आदमी का बात ही होती है शादी करने आती है आशीर्वाद नहीं देते हैं क्या संपत्ति का अनुभव वो धन आशीर्वाद देती है लेकिन वो उनका आशीर्वाद जो है वो अल्प का है वो आशीर्वाद देती है आयुष्मान भव लेकिन वो भी अल्प काल का पुत्र का अनुभव वो भी अल्प काल का क्यों धन पुत्र पैदा हो जाए लेकिन कोई गारंटी गारंटी नहीं है कि वो गिनती है सुखदाई होगा बच्चा पैदा हो जाए और दुखदाई हो जाए उसके बाद भव ये वरदान हुआ ये अभिशाप हो गया अभिशाप हो गया बच्चा पैदा हो और वो बच्चा माँ बाप के लिए दुखदाई बच्चा तो पुत्र का भव का वरदान हुआ या अभिशाप हो गया अभिशाप हुआ ना उसको वरदान देने के लिए लेकिन परमात्मा बात ये व्यक्ति को वरदान देते हैं उनमें किसी प्रकार की अभिशापी को बंद हो ही नहीं सकती वरदान ही वरदान होता और अंतकाल का वरदान नहीं इसकी जन्म के लिए वरदान इसकी जन्म में कोई ऐसा जन्म नहीं होगा जिसमें तुमको बच्चा पैदा नहीं पुत्रवान भव ये असली वरदान हुआ आयुष्मान भव कोई ऐसा जन्म नहीं होगा जिसमें अकाले मौत हुए तो आयुष्मान भव का सबका वरदान बात आकर के देखिए और संपत्ति दान भव देवता जैसी संपत्ति तो और किसी के पास होती है बाकी सबसे भक्ति मार्ग के गुरु हैं ज्ञान सागर बात तो एक ही है जिसके लिए जाते हैं जी का सुना करके वो कह लेते हैं कि जैसे भगवान हुआ अरे सत्य कह के भगवान होगा कौन कह देते हैं कि भगवान हुआ भक्ति जी कहाँ होती है ब्राह्मण की तरह दुनिया में समझते हैं कि कृष्ण जी को नहीं ज्यादा देख रहा है ब्रह्मा के रूप में भगवान वाच करती डॉक्टर ने भगवान वाच नहीं है भगवान वाच कौन है भगवान वाच तो परमात्मा खुद है जो आकर के नर की दुनिया को स्वर्ग बनाता है कोई मनुष्य स्वर्ग नहीं बना सकता नरक की दुनिया का विनाश नहीं कर सकता इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए इब्राहिम बुद्ध चाहे गुरु नानक जैसे वो भी पुराने पद का विनाश नहीं कर सकता इसके लिए सामना करना होता है मुकाबला करना होता है पुराने पद का विनाश कोई नहीं कर सके पुराने धर्म का तो जब विनाश नहीं कर सके अपनी धारणाओं की स्थापना करी तो फायदा क्या होगा विषता भरा हुआ घड़ा हो और उसमें लोटा दो लोटा दूध डालते जाओ तो क्या रहेगा विषता बिजली ही रहेगा है तो भविष्य ही बुद्ध ग्रह से आए इस दुनिया उन्होंने आकर के अपने घर की स्थापना की लेकिन दुनिया बिगड़ती चली गई या सुधरती चली गई और ही बिगड़ती चली उससे सुधार नहीं हो सकता क्यों क्योंकि उन्होंने पुराने पर बिना घर के अंदर का कचरा निकाला ना जाए और अच्छे अच्छी सुंदर सुंदर बच्चियां संभालते रहे सजाते रहे तो घर का हाल क्या होगा तो कुछ फायदा नहीं है क्योंकि अंदर कचरा और बदबू तो पहले ही बड़ी हुई है
चाहिए। तो ज्ञान का अगर बात एक ही है जो आकर के भगवान के रूप में परमात्मा पाद के रूप में सारे संसार में प्रकट होता है, तो कैसे भगवान होगा? ये तो ऊपर वाले को बुलाते हैं और प्रश्न ऊपर वाला है या नीचे वाला है? तो बच्चा करके पैसा देता है ना, कोई तो जन्म लेगा कि ऊपर से कटकेगा, जन्म लेगा ना, तो जिससे जन्म लेगा वो कैसा हुआ ना, तो ऊपर वाला कौन हुआ? उसका बाप उसको जन्म देने वाला ऊंचा हुआ या किसने ऊंचा हुआ? उसका बाप जन्म देने वाला उसको ऊंचा हुआ। तुम आत्माएं रूप बदलती हो, बाकी तो मनुष्य करने नहीं आएंगे और कितने में आएंगे? बैल करके नहीं आएंगे, बैल करके आएंगे क्या? परमात्मा आएगा तो साधारण मनुष्य कर आएगा या बैल के रूप में पाठ करने का नहीं आएगा? जानवर में आएगा, जानवरों को नहीं आकर के सुधारता है। जब मनुष्य सुधरते हैं तो जानवर अपने आप से मिल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफी को रूप बदल कर मनुष्य कर आओ, तो मैं कोई बैल कच्छ अथवा मठ में नहीं आता हूँ। मनुष्य में भी कोई होते हैं बैल की तरह पाठ में रहने वाले, जैसे बैल होता है ना जानवर बुद्धि, तो जो जानवर बुद्धि होता है वो अपनी जानवरीय जरूर दिखाएगा टाइम आने पर, ऐसा माहौल बनने पर। और मनुष्य कुछ देखेगा, मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मन का उपयोग करे वो मनुष्य, मनु की औलाद को मनुष्य कहा जाता है। मनु मन आदि ब्रह्म, आदि ब्रह्म की जो शक्ति संतान होगी वो मनन चिंतन मंथन जरूर करेगी। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं करता है तो वास्तव में वो मनुष्य नहीं है, मनु की औलाद औलाद नहीं है, जानवर है। तो पहले पहले मन की शक्ति बची जाती है, ऐसे नहीं बैल के द्वारा आकर के बैलों की शक्ति रखते नहीं, जैन है प्रजाति का ब्रह्मा द्वारा नहीं शक्ति रखी जाती। तो दो बात हो गई, एक तो परमपिता परमात्मा की जिसको कहते हैं हे अनाथों को तनाथ बनाने वाला बाबा आओ, फिर कहते हैं ज्ञान की भी प्रगटा ज्ञान देर बिना, ज्ञान के लिए वो बात ही है, बाप वो है बाप, ब्रह्मा के तन में बैठे हुए बोल रहे हैं तो वो है बाप क्यों कह दिया? जल्द आने वाला जो भविष्य का पार्ट है उसके लिए ये इशारा दिया कि वो ज्ञान की बात है। जिस ज्ञान के उदय होने पर उसके सामने आ गया अज्ञान का अंधेरा टिक नहीं सकता, अज्ञान अंधकार फैलाने वाले जो रोज डकैत है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, सामने नहीं आ सकते। क्या अंधकार सूर्य के सामने रह सकता है? नहीं रह सकता, पीछे पीछे से चाहे जितना भी बगल में बचाए लेकिन सामने आकर के बात नहीं कर सकता। तो ज्ञान की भी प्रगटता अज्ञान योजना की चित्तम की बात है, वर्तमान संबंध की भी बातें हैं और वो कोई सूची नहीं है क्या? उसकी कोई भूल होती है क्या? कौन सा चीज है? ज्ञान का चीज है, ज्ञान की रोशनी है, स्कूल रोशनी की बात ही नहीं, न स्कूल अंधकार अज्ञान का अंधकार। अज्ञान का उसे कहा जाता है जिसमें बाप का ज्ञान ही न हो, बाप की जानकारी न हो, बाप को जानता है तो जानकारी है ज्ञानी है, और बाप को नहीं जानता है तो अज्ञान। जो बाप को नहीं जानेगा वो अपने स्वरूप को भी नहीं जानेगा, बाप को जाना तो अपने स्वरूप को भी जाना। तो गाते हैं ज्ञान की प्रगटा ज्ञान देना, जो सबसे ऊंचे है वो बाप है, कोई को भी समझना चाहिए। ड्रामा है, ड्रामा में ऊंची से ऊंचे पाठदारी कौन ऊंचा है?
विदेशी में ये बात होते हैं तो पश्चिम में सूर्य होगा, लेकिन ये नियम बना हुआ है कि प्राप्ति है तो आती नहीं कर पाते। जिनके दिल में जिनके दिमाग में प्योरिटी के प्रति आकर्षण होता है, पश्चिमी सभ्यता में अभिविचारी व्यक्तियों की तरफ कोई बढ़ावा नहीं है, कोई महत्व नहीं है, इसलिए वो परमात्मा को पहले पहचानते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाते। जो वर्षा लेना चाहिए वो वर्षा नहीं लेता। वो इसी के लिए भी मैं भी होती यहाँ कहा फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है। क्यों आओ फिर से? आए तो थे लेकिन क्या हुआ, हम माया के स्वरूप को नहीं पहचान सके, माया रावण को नहीं पहचान सके। दो नाम दिए, माया और रावण। ये रूप अगर हमने पहचान लिया होता तो माया के चुंगल में नहीं फंसते, तो माया का प्रसार हमारे ऊपर पड़ गया, इसलिए अब फिर से आओ। अथवा कह के रावण आया कि वो पड़े सारा दुखी ही दुखी है, कैसे भी हम सारा भ्रष्टाचारी पति कहे, ऐसे आचार्य है व्यस्त आचार्य, व्यस्त इंद्रियों से आचरण करने की हमारी रग पड़ी हुई है, तो कथित हुए। तो बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संग में भी आता हूँ, दो बार कल्प बोल देते, तीन तीन बार कल्प बोलने की क्या जरूरत, कहीं तीन बार बोलते कहीं चार बार भी बोलते। कल्प पहले में कल कल्प 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 के संग में भी आता, बोलने वाला कोई चलिया हरिया तो है नहीं, फालतू फालतू ऐसे ही शब्दों को बोलता रहता है, पागलों पागलों का बोलना और कवियों का बोलना, और कवियों का कवि जो ज्ञान शून्य सेवा है उसका बोलना, उसमें अंतर तो जरूरी है। कल्प कल्प का यहाँ मतलब है कि हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं समय हुई, माने हर युग में कोई न कोई वर्ण विशेष की आत्माएं अपना शूटिंग का कार्य संपन्न करती है। ये संगम की ही बात है। सत्व प्रधान सत्युग उसमें देवता वर्ण, तो पहले सब तीन की शूटिंग होती है, देवता वर्ण की आत्माएं चार अवस्थाओं से पहले गुजरती है अपने शूटिंग पीरियड का। कौन सा टाइम है उसका? सन 36-35 से ये भी शुरू हुआ, जबकि आदि ब्रह्मा की एज 7 साल, वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश, और 100 साल ब्रह्मा की पूरे होने चाहिए, तो सब पूरे होते हैं 76। ये 76 तक का पीरियड सचुकी देवतावरण की आत्माओं का शूटिंग का पीरियड है। ये देवतावरण की आत्माएं चार अवस्थाओं में गुजर जाती है, तो जैसे कि एक कल्प पूरा हो जाता है, तत्व प्रधान उस समय कहेंगे जब क्रांति में एक पाप का साकार संग था, तत्व सामान्य उस समय कहेंगे जब माउंट आबू में दुनिया वालों का भी संग हुआ, क्योंकि सेवा के अर्थ बाहर जाना पड़ता था, और बीच बीच में गोसून कलसून का आर्डर मिला हुआ था, तो बच्चे बाप के पास जो आते थे आर्डर को फॉलो करते थे, उनकी अवस्था भल दुनिया में जाने से नीचे गिरती थी, लेकिन बाप के साकार संग में आने के कारण फिर ऊंची उठ जाती, तो अवस्था नीचे गिरी हुई नहीं कहेंगे। मैंने सत्व प्रधान और सत्व सामान्यता की शूटिंग कराची और माउंट आबू में हुई, जब तक मम्मा बाबा जी बिताए, पर जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो जो साकार संघ था वो चला गया, गुप्त हो गया, वाणी से परे हो गया, चला नहीं गया, रहा तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया का ही पहले परिवर्तन करना है, बाहर की दुनिया का तो बाद में परिवर्तन होगा, पांच से ग्रह तत्वों वाली बड़ी दुनिया का परिवर्तन तो बहुत बाद में होगा, लेकिन पहले तो आत्मा रूपी बच्चों का परिवर्तन होना, तो चला नहीं गया लेकिन आंखों से ओझल हो गया, वाण प्रति हो गया, वाणी से परे होकर के पाठ बजाने लगा। तो जो चीज सन्मुख होती है उसे सन्मुख देख करके फॉलो करना सहज होता है, और बुद्धियों से जो चीज खींची जाती है उसमें कभी स्मृति रहती है कभी स्मृति नहीं रहती, इसलिए जैसे कि ज्ञान सूर्य छिपा तो ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात शुरू हुई, ये शुरुआत हुई, इसलिए कहेंगे रजो प्रधान। और जब से मेले मनाखड़े शुरू हुए 73 से, तब से तम प्रधानता का पीरियड यज्ञ के अंदर देवता वर्ण की आत्माओं के लिए शुरू हो गया, ढेर की ढेर जात जात की आत्माएं दृष्टि वृत्ति के कनेक्शन में आने लगी, और जब ढेर के ढेर पतित आत्माएं कनेक्शन में आएंगी तो उनके संग करण तो जरूर लगे, एक तो मनुष्य गुरुओं का संग वो तो वही पतित बनाने वाला, परमात्मा का सातु साकार में संग रहा नहीं, और फिर दुनियावी मनुष्यों का संग, नदियों नदियों का मेला, ज्ञान सागर का मेला तो कहेंगे इन प्रैक्टिकल में, तो हुआ पतन दो कंजुक्ति सूची, मैंने चार अवस्थाओं की सूची जो है जब हो जाती है पूरी तो फिर दूसरा कल्प शुरू होता है, कौन सी युग की शूटिंग कर, त्रेता युग की शूटिंग, यानी छत्तीसगढ़ की आत्माओं की शूटिंग का कार्य शुरू, वो भी चार आत्माओं के पता होता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन होता जाता है, पहले सीन का सात सामान इकट्ठा करने में टाइम लगता है, दूसरे सीन को शूट करने में रिहर्सल करने में इतनी मेहनत नहीं लगती, तो वो पीरियड है 12 वर्ष सेकेंडरी ब्रह्मा, आदि ब्रह्मा उसकी एज पूरी हुई 75, और सेकेंडरी ब्रह्मा कौन, शिव बाप जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, कौन कौन साथ में आता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी होते, तो विष्णु का रूप तो कोई अलग से रूप नहीं बताया, वो तो दो का कॉम्बिनेशन है, लेकिन शंकर और ब्रह्मा ये दो रूप हुए, शंकर को शिव शंकर में आए के एक कर दिया है, क्योंकि शंकर को भी जन्म मरण में नहीं दिखाया और शिव को भी जन्म मरण में नहीं दिखाते, शंकर के लिए कहते अमोघ लिंग, अमोघ लिंग होने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, यह तो सारी देहरी की बात है, या तो ज्ञानवीरी की बात है, ऐसा ज्ञानवीरी धारण करने वाला जो कभी स्थलित नहीं होता, माना उसका ज्ञान कभी उससे अलग नहीं हो पाता, मोस्टली जीवन में आते हुए ऐसा होता है कि ज्ञान तो हम बुद्धि में धारण कर लेते हैं लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ज्ञान बुद्धि में से खिसक जाता है, भूल जाते हैं, तो परमात्मा पार्थ का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, शंकर का स्वरूप, वो अनित्य बुद्धि बनने वाला नहीं, कैसी भी माया की कोई भी परिस्थिति आ जाए, माया का कोई भी विकराल रूप आ जाए, लेकिन परमात्मा पार्थधारी जो स्वरूप है वो कभी अपने तेज से नीचे नहीं आएगा, अटल होता है, अखंड पाठ बजाने वाला, इसलिए ज्ञान में जीना और ज्ञान में मरना ये नहीं होता, तो शिव के लिए भी जन्म मरण रहित कहा गया, तो शंकर के लिए भी जन्म मरण रहित कहा गया, इसलिए दोनों को मिला करके एक कर दिया, वास्तव में दोनों आत्माएं तो अलग अलग संत को याद की स्टेज में दिखाते हैं तो याद करता है तो जरूर उसके ऊपर पापों का बोझ है, तब तो याद करता है। संपन्न स्टेज जो है वो दिखाई गई याद की अवस्था है। कहने का मतलब ये हुआ कि राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा बाप का पार्ट बजाती है, कृष्ण वाली आत्मा बच्चे का पार्ट बजाती है। तो बच्चे के रूप में जो मृदुल पार्ट है वो बच्चे के द्वारा ही का प्रत्यक्ष होता है। तो त्रेता युग शूटिंग में राम वाली आत्मा के द्वारा परमात्मा शिव प्रत्यक्ष तो होते हैं दोबारा, लेकिन पूर्ण रीति से प्रत्यक्ष नहीं हो पाते। क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो पाते? क्योंकि वो प्रत्यक्षता भी विदेशी बच्चों के द्वारा शुरू होती है। जो बीज हैं सारी सृष्टि के, उन बीजों के भी जो बीज हैं, चार मुख्य धर्मों के चार मुख्य बीज जिन्हें चार सफेद घोड़ों के रूप में दिखाया जाता है, वो बीज ही निमित्त बनते हैं। लेकिन उनमें एक पहला बीज तो भारतीय, बाकी के तीन बीज हैं इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन के बीज। वो बाप को संक्षेप में प्रत्यक्ष करते हैं, राम बाप को। जो राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में फेल हो गई, वही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के फिर पुरुषार्थ करती है और पूर्व जन्म की प्रारब्ध के कारण लास्ट में आने पर भी फंस जाती है। तो त्रेता युग की शूटिंग का जो लक्ष्य है वो उतना लंबा नहीं है जितना देवतावण के लिए टाइम लग जाता है, वो सिर्फ 12 वर्ष की है। यानी सेकेंडरी ब्रह्मा सत्यवाणी सोल जो टाइटल धारण करता है अपने बाप का, कौन सा टाइटल? प्रजापिता ब्रह्मा। वो प्रजापिता ब्रह्मा टाइटलधारी ब्रह्मा जो है वो भी उसकी आयु 89 में जाकर के पूरी होती है, 88-89। इसका प्रूफ ये कि मुरली में बोला है कराची से मुरली निकलती चली आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात को 2 बजे उठ करके लिखते थे और बाप लिखाते थे। इससे साफ जाहिर हो गया कि जब कराची में आकर के सारा संगठन इकट्ठा हुआ है, सिंह हैदराबाद से हिन्दुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो कन्या माताओं को मौका मिल गया बाहर निकलने का, बाबा के पास पहुंचने का। उस समय से मुरली निकलना शुरू हुई है ब्रह्मा के रूप और पता कैसे चलता है कि इन्हें बाप भगवान ये प्रश्न मुरली ने किया। कैसे पता चलता है? जब ज्ञान सुनाते हैं तभी तो पता चलता है कि इन्हें बाप भगवान। तो ब्रह्मा के रूप से कराची से मुरलियां निकलना शुरू हुई और कराची से ही परमात्मा शिव ने उनमें प्रवेश करना शुरू किया। उससे पहले कोई दूसरे बच्चे थे जिनमें शिवबाप की प्रवेश कर लिया, वो राम सीता वाली आत्मा जिनके लिए मुरली में बोला है ऐसे ऐसे बच्चे थे, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी। कौन से मम्मा बाबा को? ब्रह्मा सरस्वती दिल कराती थी, टीचर होकर के सामने बैठती थी। आज वो बच्चे ये दिन है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि के आदि में ऐसी सशक्त आत्माएं थी जो मम्मा बाबा जैसी आत्माओं को भी कंट्रोल कर सकती थी, तो जो आदि में हुआ तो अंत में भी जरूर होगा। तो वो ही आत्माएं दोबारा प्रत्यक्ष होती हैं और उनमें ब्रह्मा की सोल माना दादा लेखराज की सोल प्रवेश करती है। प्रवेश करके अपना जो पार्ट है ब्रह्मा की एज का 100 साल का वो भी पूरा होता है। यानी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब परमात्मा शिव ने दादा लेखराज में पहले प्रवेश किया, उस समय उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 60 साल। और उसमें 60 साल में 40 वर्ष और जोड़ दिए, तो 88-89 ये पीरियड हुआ सेकेंडरी ब्रह्मा टाइटलधारी ब्रह्मा उसकी 100 साल एज पूरी होने का पीरियड। सौ साल पूरे होते हैं तो वो होती है त्रेता युग की चंद्रवंश की ज्ञान चंद्रमा के द्वारा जो कार्य विशेष होता है ये विशेष कार्य क्यों कहा जाए विशेष इसलिए कहा जाए कि 76 तक तो परमात्मा शिव ने विशेष कार्य किया बच्चों के द्वारा सेवा करने का लेकिन 76 से ब्रह्मा की सोल भी बच्चों में प्रवेश होकर के पाठ बजाते हैं बच्चे समझ लेते हैं कि हम सेवा करते हैं लेकिन सारी सेवा करता कौन है शिव और ब्रह्मा की सोल बाप दादा ही बच्चों में प्रवेश करके टाइम टू टाइम बच्चे की पावर देते हैं वाचा की पावर देते हैं जो अहंकारी बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते वो समझते हैं हमने ऐसा किया तमो प्रधान बने पड़े 84 जन्म के तमो प्रधान हम कहां से सतो प्रधान सेवा करेंगे सत्य की स्थापना का काम हमारे द्वारा कैसे होगा ये तो बाप दादा का ही काम है वो हमसे काम कराता है हाँ कराता हूँ से जो हिम्मत करे तो हिम्मत बच्चों की और मदद बाप दादा तो 76 से लेकर के 89 तक का पीरियड हुआ त्रेता युग शूटिंग इसमें भी चार अवस्थाएं क्योंकि इसमें जो चार अवस्थाएं जिनकी प्रत्यक्ष होती है वो है बीज रूपाश्रय जड़ों के भाग में बैठी हुई नहीं जड़ों का भी कोई बीज है जो यदि के आदि में भी थे और फिर लास्ट में भी प्रत्यक्ष होते हैं 76 के बाद इस तरह हर कल्प की शूटिंग में हर वर्ण की शूटिंग में चार अवस्थाएं समाई हुई जब तक ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष रहता है तब तक है ब्रह्मा का दिन ततो प्रधान ततो सामान्य स्थित और जब वो अप्रत्यक्ष हो जाता है गुप्त हो जाता है चाहे आधारभूत आत्माओं के लिए चतुर्थी शूटिंग में और चाहे बीज रूप आत्माओं के लिए त्रेता युग शूटिंग तो जब गुप्त हो जाता है तो ब्रह्मा की विराट और ब्राह्मण की विराट तो चार अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है शूटिंग पीरियड में तो कल्प 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 ये जो तीन बार शब्द बोला है ये इसीलिए संयम के लिए बोला है इसके लिए शास्त्र में लिख दिया संभवा में युग योगे मैं हर युग के अंत में आता हूँ हर युग के अंत में नहीं आता है साढ़े वर्ष 12 वर्ष के बाद उसे आने की बार बार सरकार नहीं है वो आता तो एक ही बार है लेकिन जब आता है तो हर युग की शूटिंग के अंत में विशेष परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता होती है दुनिया में भी और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विशेष इसलिए बोला कि मैं कल्प 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 के संगम में भी आता हूँ 5000 वर्ष पहले भी आया था तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया का 5000 वर्ष पहले कब हुआ लेकिन ये आदमी कहीं 36-37 ऐसे कल्प के संगम में भी आया हुआ हूँ बाप आकर के आफत देते हैं बच्चे बेफिक्र हो इसको आफत देते हैं धैर्य देते हैं बच्चों को बच्चे तुम घबराओ मत कोई फिक्र मत करो ये मेरा ही पार्ट है क्या कि कल्प कल्प संघ में मुझे आकर के नए संगठन की स्थापना कर देता हूँ नया संगठन बनाना मैंने नई दुनिया बनाना ब्राह्मण की संघ में दुनिया में नया संगठन बना देना संगठन माना माला बना देना नया मकान बना देना नया किला बना देना वो जड़ ईंटें होती हैं और ये कैसे ईंटों का किला तैयार करता हूँ ये मेरा ही पार्ट है बच्चे कहते हैं बाबा आओ आकर के फिर से राजयोग सिखाओ ताकि तो दुनिया को आकर के पावन बनाओ ऐसे नहीं कहते कि जाकर के पावन बनाओ आओ पढ़ाई पढ़ा के चले जाओ फिर हम ऊपर बैठे बैठे तुम पावन बनाते रहो हम पावन बनते रहे ऐसे नहीं क्या बोला आकर के पावन बनाओ क्यों आदि ऊपर बैठा रहे और हम याद करते रहे और पावन बन जाए, पतित कैसे बने? रंग के रंग में आकर के पतित बने ना, अनेकों के संग के रंग में आए तो भारतवासी पतित बने, तो एक के संग के रंग से पावन बनेंगे। इस समय सब नास्तिक आर्थन निर्धन के हैं, धनी धोरी को नहीं पहचानते। आर्थन उनको कहा जाता है जिनको दुनिया में अशांति, इसलिए बच्चों को दुख से पार कर रावण के राज्य से छुड़ा करके राम राज्य सुखधाम ले जाने के लिए आए। बाप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। क्या क्या फर्ज है मेरा? रावण राज्य से छुड़ाता हूँ और राम राज्य सुखधाम में ले जाता हूँ। तो राम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, राम चाहिए तो राम का राज्य होगा और राम का राज्य होगा तो सुखधाम होगा। रावण का राज्य अभी चल रहा है तो रावण कहाँ होता है? रावण सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में प्रत्यक्ष होता है? नहीं, राम भी प्रत्यक्ष होता है संगम युग में और रावण भी प्रत्यक्ष होता है संगम युग में। रावण के दस सिर दिखाए जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि ऊपर से आने वाले धर्म के कहें वो कोई रावण का पाठ बजाते हैं, नहीं, वो तो सतोप्रधान सोल आती है परम धाम से, वो तो सात्विक स्टेज का पाठ बजाती है, उसको रावण नहीं कहेंगे। सात्विक स्टेज में जो आत्मा आती है किसी को दुख देती भी नहीं और दुख लेती भी नहीं, जैसे क्राइस्ट उसने जीसस में प्रवेश किया, तो दुख किसने भोगा? शरीरधारी ने या ऊपर से आने वाली आत्मा ने? शरीरधारी ने दुख भोगा। तो उन धर्म पिताओं को रावण का रूप नहीं कहेंगे, लेकिन वो धर्म पिताएं जिसमें प्रवेश करते हैं वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बनती है। वो वहां भी कन्वर्ट हो जाती है तो जब परमात्मा बाप इस संगम युग में आता है वही आत्माएं फिर कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनती है और फिर माया के चंबे में आ जाती है। उनके अनेक जन्म के संस्कार ही कन्वर्ट होने के, इसलिए वो फिर यहां भी कन्वर्ट हो जाती है। परमात्मा बाप को धोखा देती है, अपनी मनमत चलाती है, ईश्वरीय मत पर नहीं चल सकती, ईश्वरीय महावाक्यों को नहीं उठा सकती, देहधारियों के चक्कर में फंस जाती, लोकलाज के चक्कर में आ जाती, दुनिया का प्रभाव पड़ जाता है, परमात्मा बाप जो गुप्त पाठ बजाता है उसके प्रभाव को नहीं पड़ पाती। तो रावण राज्य कौन सी दुनिया में हुआ? बाहर की दुनिया की जीते नहीं रावण राज्य, नहीं, रावण का जो रूप है, चरित्र है, जिसका चित्र बनता है वो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में तैयार होता है। जब दस चेहरे हैं, चित्र हैं, तो चरित्र पकड़ने वाले भी कोई होंगे ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इतनी बड़ी दुनिया है तो इतनी बड़ी दुनिया में कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते। तो जब नंबरवार होंगे तो 100% कोई कामी भी होगा, 100% कोई क्रोधी पाठ बजाने वाला भी होगा रंगमंच पर, तो वो इस समय प्रत्यक्ष होगा। और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही ऊंचे ऊंचे नीचे नीचे पाठदारी प्रत्यक्ष होते हैं। उन रावण के चुंबन से छुड़ा कर तुमको राम राज्य में ले जाओ। कहते भी है राम है एक और सीताएं हैं अनेक, तुम सब सीताएं रावण की जेल में फंसी हुई, तुम में किसी में ताकत नहीं है जो टक्कर लेकर के और रावण को खलास कर सको, ये मेरा ही काम है। तुम सब सीताएं रावण के चुंबन में फंस गई, मैं राम आकर के तुमको छुड़ाता हूँ गुरुओं की जंजीरों से। रावण कौन? ये गुरु लोग। आप कहते हैं ये मेरा फर्ज है। सभी कहते हैं वेद के बाबा अभी ऊपर से तख्त छोड़ करके आए हो,